नमस्कार भारत, तारीख 5 सितंबर, दिन बुधवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। इदलिब में रूस समर्थित सीरियाई सेना की हमले की तैयारी, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दी चेतावनी।
Idlib is serious. You know, let's just acknowledge the elephant in the room, and that is the fact that.
कोलकाता में पुल हादसे के बाद बचाव कार्य अभी भी जारी, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका।
3 करीब लोग फंसे हुए हैं, वही 3-4 लोगों को ढूंढने के लिए उन्हीं से काम चल ही रहा है।
मध्य प्रदेश में SC ST एक्ट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन, ग्वालियर चंबल संभाग में हाई अलर्ट।
SC ST एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले जांच हो, फिर चाहे सख्त उससे कार्रवाई मिले, हम उसके लिए तैयार हैं।
होंगी अन्य खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार सिंधुआसिनी से। संयुक्त राष्ट्र ने रूस और तुर्की से सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में होने वाली तबाही को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र की यह चेतावनी ऐसी आशंकाओं और खबरों के बीच आई है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना रूस के समर्थन से घनी आबादी वाले इदलिब में आक्रामक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है। इससे पहले मिली जानकारी के मुताबिक रूसी विमानों ने इदलिब के मुहम्बल और जदराया इलाके में हमले किए हैं, जिनमें बच्चों समेत 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज के उम्मीदवार ब्रेट कैवनो ने जोर देकर कहा है कि वो निष्पक्षता में भरोसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक पक्षपात पूर्ण संस्था के तौर पर कभी नहीं देखा जाना चाहिए। मैं अदालत के सामने ये कहता हूँ कि मैं 9 लोगों की टीम का हिस्सा बनूंगा। मैं अमेरिका के संविधान और कानून के मुताबिक फैसले देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं हमेशा एक टीम प्लेयर बनने की कोशिश करूंगा। ब्रैट कैवनो के शब्द। इससे पहले अमरीकी सीनेट की एक समिति के समक्ष कैवनो के नाम की पुष्टि से पहले काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा। विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों ने उनके विरोध में बार बार नारे लगाए और समिति की सुनवाई को स्थगित करने की मांग की। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य इसलिए नाराज हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने उन हजारों कागजातों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है जिनमें कैवनो के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के लिए किए गए काम का ब्यौरा है। म्यांमार में राष्ट्रीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन के आरोप में जेल की सजा का सामना करने वाले 2 पत्रकारों की पत्नियों का कहना है कि उनके पति बेगुनाह हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। वा लोन और क्याव सोओ नाम के इन दोनों पत्रकारों की पत्नियों ने ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। क्वायसो की पत्नी चित सुविन ने कहा कि वो इस बात से दुखी हैं कि उनकी बेटी को उसके पिता से अलग कर दिया गया है। ये सही नहीं है कि मेरे पति को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मेरी बेटी अभी सिर्फ 3 साल की है और जब वो अपने पिता से दोबारा मिलेगी तब 10 साल की होगी। वो मुझसे पूछती है कि मम्मी, क्या पापा आपसे प्यार नहीं करते? वो आपके साथ क्यों नहीं हैं? म्यांमार के पत्रकार क्याव सो की पत्नी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मशहूर अमरीकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की नई किताब में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार अमरीकी रक्षा मंत्रालय को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या के आदेश दिए थे। वुडवर्ड की इस किताब में ट्रंप प्रशासन की कड़ी समीक्षा की गई है। किताब में रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के हवाले से कहा गया है कि 2017 में सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद ट्रंप ने असद को जान से मारने की मांग की थी। हालांकि ट्रंप ने इन सारे दावों को झूठा बताया है और कहा है कि ये सारी बातें लोगों को बरगलाने के लिए गढ़ी गई हैं। अर्जेंटीना के वित्त मंत्री निकोलस डुखोवने ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टिन लैगार्ड से वाशिंगटन में मुलाकात की है। उन्होंने लैगार्ड से अर्जेंटीना के गंभीर आर्थिक संकट, पीसों की लगातार गिरती कीमत और $50 बिलियन के कर्ज के मुद्दे पर बात की। लेगार्ड ने कहा था कि वो अर्जेंटीना की आर्थिक संकट से उबरने में मदद करना चाहती हैं। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। एक बार फिर सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में भारी संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा अनुमान है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले अंतिम बड़े इलाके इदलिब को मुक्त कराने के लिए रूस समर्थित राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना ने कमर कस ली है। वहीं इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र और अमरीका ने आगाह किया है। उनका कहना है कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधु वासिनी से।
सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक गांव में हवाई हमले होते रहे। हम घर पर ही थे जब एयरप्लेन हमारे घर के पास आ गए। हम घबरा गए और वहां से भाग गए। मैंने बाकी लोगों को भी घर खाली करने को कहा। मुझे पता था कि रूसी फिर हमला करेंगे। यही हुआ। उन्होंने प्लेन से घर पर पूरा दम लगाकर हमला किया और तीसरी बार में पूरा घर गिर गया। ये डरी हुई आवाजें सीरिया के इदलिब प्रांत में रहने वाले लोगों की हैं, जो रूसी हवाई हमले के डर से अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। खबर है कि रूसी विमानों ने इदलिब के मुहम्बल और जदराया इलाके में हमले किए हैं, जिनमें बच्चों समेत 9 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने रूस और तुर्की से सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में होने वाली तबाही को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र की यह चेतावनी ऐसी आशंकाओं और खबरों के बीच आई है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना रूस के समर्थन से घनी आबादी वाले इदलिब में आक्रामक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है। यूएन में अमरीका की दूत निकी हेली ने कहा कि इदलिब में हालात गंभीर हैं और वहां से चीखें सुनाई दे रही हैं।
Idlib is serious. You know, let's just acknowledge the elephant in the room, and that is the fact that
आपने ईरान, रूस और असद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी सुनी है। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इदलिब के लोगों पर रासायनिक हमले की मंजूरी नहीं देगा। सीरिया के लोग पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। ये त्रासदी वाले हालात हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत निकी हेली के शब्द। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर असद की सेना ने लोगों पर रासायनिक हथियारों से हमला किया तो वो इसके खिलाफ उचित और त्वरित जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक दिन पहले सीरियाई सरकार समेत ईरान और रूस को चेतावनी दी थी कि अगर वो विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब पर हमला करते हैं तो ये मानवता के प्रति एक गंभीर अपराध होगा। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि अगर इदलिब पर हमला हुआ तो हजारों लोग मारे जा सकते हैं। देखना ये होगा कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों का असर असद सरकार और रूस पर होता है या नहीं।
सीरिया के इदलिब में मंडराता हमले का खतरा बता रही थी सिंधु वासिनी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आते हैं भारत। कल शाम दक्षिणी कोलकाता के माझेर हाट पुल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें अब तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 21 लोग जख्मी हैं। पुल के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका थी और कल देर रात तक राहत बचाव कार्य जारी था। अब से कुछ देर पहले मैंने कोलकाता में बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली से बात की और घटनास्थल का ताज़ा हाल लिया।
बचाव कार्य जो NDRF और कोलकाता पुलिस की DMG और फायर ब्रिगेड इन्होंने शुरू किए थे घटना के बाद ही, वो अभी भी चल रहा है। और करीब 30 इंच के जो कंक्रीट के स्लैब है वो काट करके उसके नीचे पहुंचने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वहां के जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जितने भी कर्मचारी वहां है फंसे हुए हैं, 3 करीब लोग फंसे हुए हैं। वही 3-4 लोगों को ढूंढने के लिए उन्हीं से काम चल ही रहा है।
अभी क्या मृतकों की संख्या कुछ बढ़ी है, घायलों की संख्या कुछ बढ़ी है?
नहीं, अभी भी मृतकों की संख्या एक ही है, जो एक मोटरबाइक पे सवार थे, और बाकी 19 3 अस्पतालों में भर्ती है।
और रेल यातायात और सड़क यातायात क्या फिर से शुरू हो चुका है?
देखिए, रेल यातायात तो कुछ देर के लिए रुक गई थी, पर सड़क यातायात की बात अगर करें तो अभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस ब्रिज के आसपास और कोई दूसरी रास्ता नहीं है जहां से गाड़ी जा सके। ये भी बता दें आपको कि ये जो माझेरहाट ब्रिज है, ये करीब 60 साल से कोलकाता और बेहाला, कोलकाता की दक्षिणी पश्चिम इलाके है और दक्षिण 24 परगना, इस इलाके का एकमात्र कनेक्टर है, वो यही ब्रिज रहा है।
कोलकाता में पुल हादसे की ताजा जानकारी दे रहे थे अमिताभ भट्टासाली। आगे बढ़ते हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली में तीन किसान और मजदूर संगठन CITU, ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस रैली को मजदूर किसान संघर्ष रैली का नाम दिया गया है और इन संगठनों का दावा है कि लगभग 3 लाख किसान और मजदूर इस रैली में हिस्सा लेंगे। वे दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद तक मार्च करेंगे। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव और पूर्व सांसद हन्नान मोल्ला से बात की और उनसे पूछा कि उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं।
एक मांग है कि किसान का फसल का सही दाम देना चाहिए और उसी दाम से सरकार को खरीद करना चाहिए। दूसरा मांग है किसान का जो कर्जा है, वो कर्जा छोटे बड़े सारे किसानों का, सरकारी और प्राइवेट सारे कर्जा माफी होना चाहिए। तीसरा है हमारा देश जो करोड़ों भूमिहीन है, ये भूमिहीन को जमीन देना चाहिए और गृहहीन जो है उसको घर बनाने के लिए जमीन देना चाहिए। चौथा है हमारा देश में करोड़ों आदिवासी जो है उसका जमीन छीन के कॉरपोरेट कंपनियों को दिया जा रहा है, ये बंद करके फॉरेस्ट राइट एक्ट का मुताबिक जिस जमीन में आदिवासी है उस जमीन का पट्टा उस आदिवासी को देना चाहिए। इसके बाद है हमारा देश में किसान जो देश को उत्पादन करके खिलाता है उसके लिए हमारा पेंशन होना चाहिए, 5,000 रुपया 60 साल के बाद किसान को पेंशन होना चाहिए। और हमारा सामाजिक जो सुरक्षा है, राशन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। और एक खेत मजदूर के लिए हमारा मांग है, खेत मजदूर का जो मनरेगा है वो पूरा फेल हो रहा है। साल में कम से कम 200 दिन काम होना चाहिए और 300 रुपया उसका रोज का मजदूरी होना चाहिए। इसके अलावा मजदूर को जो मांग है, हमारा देश में जो मजदूर कानून है वो अभी बीजेपी सरकार उसको तोड़ मोड़ करके मजदूर को हक को छीन रहा है, मजदूर को उसको कॉन्ट्रैक्टर मजदूर में बदलने का कोशिश कर रहा है। ESI प्रोविडेंट फंड जो सामाजिक सुरक्षा है उसमें सुविधाएं घटाया जा रहा है, मजदूर पर जो काम का बोझ बढ़ते जा रहा है उसको तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। और हमारा देश में मजदूर का न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया होना चाहिए। आज को जो खर्चा है 18,000 से नीचे मजदूर का जिंदगी बिता नहीं सकता।
अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे आपका क्या कार्यक्रम रहेगा?
हमारा जनवादी देश है, जनवादी देश में जनता का ओपिनियन में सरकार बनता है। जब जनता का मांग को सरकार नहीं बनेंगे, जनवाद तैयार करना ही जनवादी ताकत का काम होता है। हम किसान मजदूर खेत मजदूर का संगठन, ये जनता का संगठन है, जन संगठन है। इसके सामने हम सारे बातों जनता के सामने रखते हैं। जो सरकार इसको नहीं मानेंगे वो जनता का दुश्मन, ये बात जनता के बीच में जाएगा।
जो सरकार समर्थक है उनका कहना है कि इस रैली की जो टाइमिंग है वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले है, पहले भी प्रदर्शन होते रहे लेकिन
अरे 4 साल हो गया नरेंद्र मोदी ने किसान का बात भूल गया था और इलेक्शन का 9 महीना पहले किसान का बड़ा आंसू बहा रहा है। क्यों 4 साल भूल गया था? आज चुनाव के पहले वो फिर नया नया झूठ बोलने का नाटक शुरू किया है। जनता इसको नजर में रखते हैं और इसलिए चुनाव होता है, जाता है, आता है। आज हमारा लड़ाई पिछले 3 साल से किसान मजदूर का लड़ाई चलते चलते आज एक सामने आगे बढ़ा है, इसलिए कोई श्रेष्ठ चुनाव के देख के हम चुनावी पार्टी नहीं है।
ये थे अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर SC ST एक्ट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते ग्वालियर चंबल संभाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्वालियर में सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, वहीं शिवपुरी और भिंड में धारा 144 लगाई गई है। शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में इस वक्त SC ST एक्ट को लेकर विरोध चरम पर है। हर शहर और कस्बों में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर में मंगलवार को रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के पास स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन क्षत्रिय महासभा, गुर्जर महासभा और परशुराम सेना की तरफ से किया गया था। सम्मेलन में इस मसले को सुलझाने के लिए सरकार को 2 माह का समय दिया गया। इसे भागवत आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने संबोधित किया और कहा कि वे दलितों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि गैर दलितों के लिए न्याय चाहते हैं।
SC ST एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले जांच हो, फिर चाहे सख्त उससे कार्रवाई मिले, हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो चाहते ही नहीं कि किसी के साथ अन्याय हो इस देश में, हम ये कभी नहीं चाहते।
सोशल मीडिया के जरिए 6 सितंबर को भारत बंद का संदेश भी फैल रहा है, जिसके चलते प्रशासन की नींद उड़ गई है। इस बंद का समर्थन सपाक्स यानी कि सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था ने भी किया है। इस वजह से प्रशासन जगह जगह पर इस संस्था के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उस दिन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। सागर शहर में भी इस तरह की एक बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर आलोक सिंह ने कहा,
यहाँ का कानून व्यवस्था बनाए रखना और यहाँ पे एक सामाजिक समरसता बनाए रखना आप सबकी भी अपनी जिम्मेदारी है। मैं केवल यही अनुरोध करूंगा कि जो भी बात हो वो एक शहर के और जिले के हित में हो, जो आप लोग तय करेंगे उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो हम जरूर देखेंगे, लेकिन हमारा और एसपी साहब का ये अनुरोध रहेगा कि किसी भी प्रकार कोई ऐसा कृत्य न हो जिसके लिए बाद में किसी को अफसोस करने की जरूरत।
वहीं सीधी की सांसद रीति पाठक का सामना सवर्ण समाज के लोगों से हुआ। समाज के लोगों ने जब उनसे सवाल जवाब किया तो वह गुस्से में आ गईं और उन्होंने कहा कि उनकी गर्दन काट दी जाए।
कहते हैं आप जिस जगह पे बैठी हमारे सेवा करने के लिए बैठी है, अब हमारी सेवा ही नहीं कर पा रही है, क्यों काहे का पद है मैडम? भैया मैं क्यों काटूं? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम,
तलवार होगा।
नहीं मैडम, ये गलत बात है मैडम, आप तो सीधे अपनी जिम्मेदारी।
लेकिन विरोध प्रदर्शन और घेराव ने स्थिति ऐसी बना दी है कि नेता अब अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर रहे हैं ताकि उनका सामना जनता से ना हो। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, नारायण सिंह, ललिता यादव और विधायक भारत सिंह ने अपने कार्यक्रमों को विरोध के चलते स्थगित कर दिया। स्थिति को देखते हुए ग्वालियर प्रशासन ने 11 सितंबर तक के लिए सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस आंदोलन ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
आज से एक साल पहले बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के एक साल बाद कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में तेजी देखने को मिली है और उसकी कार्रवाई से कर्नाटक के ही डॉक्टर एमएम कलबुर्गी, महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और सीपीआई नेता गोविंद पंसारे के हत्या मामलों को लेकर अहम सुराग मिले हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
गौरी लंकेश की हत्या पिछले साल आज यानी 5 सितंबर की रात को हुई थी। उस हत्या के एक हफ्ते बाद एसआईटी को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें बताया गया था कि जिस पिस्तौल से गौरी लंकेश की हत्या की गई थी उसी पिस्तौल से 2 साल पहले धारवाड़ में डॉ एमएम कलबुर्गी की हत्या की गई थी। लेकिन इसके बाद करीब 5 महीनों तक गौरी लंकेश के हत्या मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। सवाल उठने लगे थे कि क्या गौरी हत्या मामला भी कलबुर्गी और महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पंसारे जैसे लटका रहेगा। फरवरी में पहली गिरफ्तारी हुई और उसके बाद करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी के अधिकारी ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले को वरिष्ठ अधिकारी बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी और केंद्र सरकार के पूर्व विजिलेंस कमिश्नर आर श्री कुमार कहते हैं,
जिस तरीके से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जब न्याय परीक्षण होगा और ट्रायल चलेगी इनको सफलता प्राप्त होगी और जब न्यायपालिका का मोहर लगेगा तभी जो है हम कहेंगे कि एकदम बिल्कुल काम अच्छा हुआ है। मगर जिस तरीके से काम चुपचाप काम किया है और जितनी अटकलें चल रही थी सब बंद हो गई हैं, इसी से लगता है कि सब लोग जो हैं इसको तायद कर रहे हैं और ये इसमें जरूर सफलता मिलेगी आगे।
दिलचस्प बात यह है कि एक साल में एसआईटी पर ये इल्जाम नहीं लगा है कि उसने किसी गलत शख्स को गिरफ्तार किया है। शायद इसीलिए एसआईटी के आगाह पर दाभोलकर और पंसारे मामलों में भी सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस की जांच ने 3 और 5 साल बाद जोर पकड़ लिया है। गौरी की बहन कविता लंकेश कहती हैं, उनके काम से ये लगता है कि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से दाभोलकर के मामले में सीबीआई जांच में कोई तरक्की नहीं दिखी थी। ये थे कविता लंकेश के शब्द। एसआईटी के आगाह करने पर ही महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में इतने बड़े पैमाने पर बारूद और हथियार बरामद किया है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों पुलिस की टीम यानी एसआईटी, सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस एक बात पर स्पष्ट है कि जो महाराष्ट्र और गोवा से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं वो ज्यादातर या तो सनातन संस्था के हैं या हिंदू जन जागृति समिति के हैं। अभी तीनों टीमों का एक ही लक्ष्य ये जानना है कि इन चारों हत्याओं के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के पुलिंदे के साथ स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं सिंधु वासनी जी, बताएं
जी। शाहिद, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि जस्टिस रंजन गोगोई का भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है और मौजूदा सीजेआई दीपक मिश्रा ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम की सिफारिश की है।
जी, बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन बनेगा,
फाइनली अब क्लियर हो गया है। और जस्टिस गोगोई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले ऐसे पहले शख्स हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य से आते हैं।
जी,
जस्टिस गोगोई की गिनती सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी मुखर जजों में होती है और इस साल जनवरी में जिन चार जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अनियमितताएं चल रही हैं, उनमें जस्टिस गोगोई भी शामिल थे, तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में एक दिलचस्प खबर है। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद के लोग कथित लव जिहाद के खिलाफ घर घर जाके अभियान चला रहे हैं और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें बाकायदा बताया गया है कि महिलाएं लव जिहाद से कैसे बच सकती हैं, और जो टिप्स दिए हैं उन्होंने वो कुछ इस तरह हैं, जैसे मंगलसूत्र पहनिए, सिंदूर पहनिए, हिंदू त्यौहार मनाइए, घर में धार्मिक माहौल बनाकर रखिए, और अगर दूसरे धर्म में शादी की है तो अपने पति का धर्मांतरण कराने की कोशिश कीजिए। एक खबर है जो कई अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को काफ़ी फटकार लगाई है और कहा है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में आम्रपाली जैसा कोई फ्रॉड नहीं है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और कई निवेशक अपना घर बुक कराने के बाद घर के इंतज़ार में बैठे हैं लेकिन उन्हें घर का पोजीशन नहीं मिल रहा है। अब अदालत ने कहा है कि वो इन्वेस्टर्स का एक एक पैसा वसूल करेगी और दोषियों को सजा दिलवाएगी।
इससे तो निवेशकों को थोड़ी राहत,
एक राहत वाली खबर। दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि सीबीआई ने जेएनयू के लापता छात्र जो नजीब अहमद हैं उनका केस बंद करने का फैसला लिया है
जी।
और सीबीआई ने ये जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी है और कहा है कि उसे नहीं लगता कि नजीब के साथ कोई अपराध हुआ है। वहीं नजीब की मां का कहना है कि सीबीआई बड़े लोगों के दबाव में झुक गई है
जी। और नजीब का अब तक कोई टिप ऑफ, मतलब कोई कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, सालों हो गए
जी। और एक खबर है कि नवभारत टाइम्स में कि अब ये बताना होगा कि प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरे पे कौन कौन गया था
जी। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए सिंधु वासिनी। बीते दो दशकों में महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बढ़ते कर्ज की वजह से अपनी जान देने वाले किसानों की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने खेती बचाने की कोशिश करते करते खुदकुशी कर लेने वाली महिला किसानों के बारे में सुना है? कृषि संकट से जुड़ी जमीनी पड़तालों की इस विशेष सीरीज में आज सुनिए विदर्भ के अमरावती और यवतमाल जिलों से बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की ये दूसरी रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के विदर्भ में इस साल भी मॉनसून देर से आया है। मैं नागपुर से सड़क यात्रा करते हुए यहाँ अमरावती जिले में मौजूद शेंदुरजना बाजार गांव पहुँची हूँ। यहाँ हो रही बारिश भी जैसे विदर्भ के लोगों की सूखी जिंदगियों में खुशहाली की नमी नहीं ला पाई है। आज की इस यात्रा में हम मिलेंगे उन महिला किसानों के परिवारों से जिन्होंने खेती के दौरान जैसे अपने पसीने से अपनी जमीनों को सींचा और फिर भी जब कर्ज का बोझ कम ना हुआ तो अपनी जान देकर उसी जमीन में खुद को मिला लिया। शेंदुरजना बाजार गांव में रहने वाले भास्कर रसोड़े का परिवार अपनी दोनों किसान बेटियों को खो चुका है। 24 साल की माधुरी और 21 साल की स्वाति की मौत की वजह है खेती के लिए लिया गया कर्ज।
दीदी मक्के से कर दीदी, मक्के में वो क्या उसको 20,000-25,000 मक्का देना पड़ता था और इधर सब लागत लगानी पड़ती थी। एक दो साल अच्छा हो गया, फिर ये लड़की शादी आ गई तो दो साल में कोई फसल हुई नहीं। पहले कपास हुई थी, कपास नहीं हुआ। बाद में धूप काले में लिए वो मूंगफली के लिए बोया था 6 एकड़ के, उसमें 90,000 रुपये घाटा आ गया। तो 90,000 रुपये घाटा ऐसे घाटा कहाँ से कर गुरु, ये लड़के को सब मालूम था। ये जो बड़ी लड़की है, ये लड़की नहीं, ये लड़का है मेरे वाला।
वहीं यवतमाल जिले के पीपरी बुट्टी गांव में 40 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मार्च 2015 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस गांव का दौरा कर वहां की स्थिति बदलने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कुछ ही महीने बाद अवसाद के कगार पर खड़ी गांव की एक और किसान शांताबाई ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। शांता के बेटे मोहन को आज भी अपनी माँ की वो चप्पलें याद आती हैं जो उस कुएं के बाहर पड़ी मिली थी जिसमें कूदकर शांताबाई ने खुदकुशी की।
2015 मध्ये देवेंद्र फडणवीस आले ते ते पुरे गाव फिरले आमच्या गावाची पुरी झेप आली त्यांनी परीक्षा ह्या गावाची दत्तक घेतलं म्हणून त्यांनी आवश्यक केलं।
2015 में मुख्यमंत्री हमारे गांव आए थे। यहाँ के हालात देखने के बाद उन्होंने गांव को गोद लेने का आश्वासन भी दिया था। मेरा घर देखने के बाद बोले, अरे इसकी परिस्थिति बहुत खराब है, इसकी मदद करेंगे। लेकिन लौटने के बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई मदद नहीं मिली।
कभी राज्य में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक के जन्म स्थान के तौर पर पहचाने जाने वाले विदर्भ में आज हर तरफ उदासी छाई है। यवतमाल जिले के वागदा गांव की रेणुका ने भी अपनी जान ले ली। वह अपने घर में अकेली कमाने वाली महिला किसान थी। रेणुका के जाने के बाद से उनके बेटे अंकुश चौहान को अपना और अपने दो भाइयों का जीवन अंधेरे में डूबा हुआ सा लगता है।
हमारा घर मेरी माई चलाती थी और मेरे दादा और दादी दोनों अपंग है और सोसाइटी का कर्जा था, एक उत्कर्ष फाइनेंस और एक दूसरा दो फाइनेंस के कर्जा थे हमारे ऊपर। उसमें सोसाइटी का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसका बहुत टेंशन मेरी माँ को आया। और दो जो उत्कर्ष और एक दिशा फाइनेंस के लोग रोज घर पे आते थे, माँ को पैसे के लिए सताते थे, रोज आके पैसा कब भरते ये वो, उसका माँ ने बहुत टेंशन लिया।
बीते दो दशकों से कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में यूं तो महिला किसानों की आत्महत्या से जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन खेतों से लेकर घरों तक उनकी खामोश चीखें बिखरी पड़ी हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और यवतमाल जिले से प्रियंका दुबे, बीबीसी।
किसानों की समस्याओं से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यूएस ओपन में, जहां पर आज क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। विमेन सिंगल्स में आज भिड़ती नजर आएंगी सेरेना विलियम्स चेक की खिलाड़ी कैरोलिना प्लिंसकोवा के खिलाफ, तो स्पेन की खिलाड़ी कार्ला सोरेस नवारो अमेरिका की खिलाड़ी मैडिसन कीस के खिलाफ खेलती नजर आएंगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में राफेल नडाल का मुकाबला होगा ऑस्ट्रियन खिलाड़ी डोमिनिक थीम के साथ और नोवाक जोकोविच का मुकाबला होगा जॉन मिलमैन के साथ। तो वहीं क्रोएशिया की खिलाड़ी मारिन चिलिक का मुकाबला होगा जापान के खिलाड़ी की निशिकोरी के साथ। और टेनिस के मैदान से अगर आपको फुटबॉल के मैदान की ओर लेकर चले तो वहाँ पर फीफा के साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के लिए जहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मुद्रिक और मोहम्मद सलाह का नाम नॉमिनेशन में किया गया है, तो मेसी का नाम इस बार की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। पिछले दशक में मेसी और रोनाल्डो दोनों ने इस पुरस्कार पर दबदबा बनाए रखा था, लेकिन एफसी बार्सिलोना के खिलाड़ी पिछले लगातार 11 सालों से शीर्ष तीन खिलाड़ियों में शामिल होने के बावजूद इस साल दावेदारों की सूची से नदारद है। फ्रांस की विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर डिडियर डेशचैम्स, क्रोएशिया के मैनेजर ज्वाल्टको डालिच और रियल मैड्रिड के पूर्व कोच जिनेडीन जिडान को फीफा के सर्वश्रेष्ठ कोच के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो वहीं गोलकीपर के पुरस्कार के लिए नामांकित खिलाड़ियों में टॉटनम एवं फ्रांस के ह्यूगो लोरिस है, डेनमार्क एवं लेस्टर के कैस्पर डेमेशील और बेल्जियम एवं रियल मैड्रिड के थिबोत कोर्तोइश शामिल हैं।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने रूस और तुर्की से सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में होने वाली तबाही को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई करने को कहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जज पद के उम्मीदवार ब्रेट कैवनो ने जोर देकर कहा है कि वो निष्पक्षता में भरोसा करते हैं। म्यांमार में राष्ट्रीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन के आरोप में जेल की सजा के सामना करने वाले दो पत्रकारों की पत्नियों का कहना है कि उनके पति बेगुनाह हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।